स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक उद्बोधन है, नवरात्रि साधना का तत्वदर्शन। तो आज हम कोशिश करेंगे कि नवरात्रि के इन 9 दिनों के अभ्यासों के पीछे जो गहरा मतलब है, जो जीवन जीने की कला है, उसे समझें, जैसा पूज्य गुरुदेव ने समझाया है। तो चलिए इस विचार को थोड़ा खोलते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि नवरात्रि सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं है, बल्कि ये तो जीवन को अनुशासित करने का एक तरह से एक ट्रेनिंग सेशन है।
बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नजरिया है। पूज्य गुरुदेव इसी बात पर जोर देते हैं कि ये जो 9 दिन हम अपनी दिनचर्या बदलते हैं।
हाँ, जैसे सुबह जल्दी उठना,
नहाने की बाध्यता, फिर खान पान पर थोड़ा अंकुश रखना।
अच्छा, जैसे वो चटपटी चीजें छोड़ना, नींबू का अचार, पापड़ वगैरह।
हाँ बिल्कुल, सादा भोजन करना और नियमित जप जैसे 27 माला। ये सब क्यों है? ये असल में हमारे पुराने ढर्रे को, हमारी आदतों को तोड़ने के लिए है, ताकि हम आत्मनियंत्रण सीख सकें। गुरुदेव ने शब्द इस्तेमाल किया है अपने आप को दबोचना, मतलब काबू में लाना।
अच्छा, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। गुरुदेव अध्यात्म की जो आम धारणा है ना, उसे चुनौती देते हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ से हम देवताओं को फंसा सकते हैं।
हाँ बिल्कुल,
जैसे कोई बहेलिया कबूतर फंसाता है या मछुआरा मछली।
बिल्कुल, और पूज्य गुरुदेव इस सोच को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि अध्यात्म का असली मतलब है साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। ये अपने आप को सुधारने की विधा है, कोई जादू टोना या चमत्कार दिखाने की चीज नहीं। नहीं ये देवताओं को चावल या नैवेद्य चढ़ाकर उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश है। ये आत्म परिष्कार का प्रशिक्षण है।
तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि असली साधना तो हमारे अंदर होनी चाहिए, बाहर से ज्यादा।
निश्चित रूप से, बिल्कुल। गुरुदेव का मानना है कि हमारी ज्यादातर जो समस्याएं हैं उनकी जड़ बाहर नहीं है, वो हमारे अपने असंयम में है।
असंयम?
जी।
कैसे?
जैसे वो कहते हैं, बीमारियां हमें क्यों पकड़ती हैं? क्योंकि हम असंयमित जीवन जीते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं। देखिए, बीमारी किसी कबूतर या बंदर के पास तो नहीं जाती ना, वो इंसान के पास आती है। क्योंकि हम अपनी जीभ पर लगाम नहीं रखते, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं, दिनचर्या ठीक नहीं।
क्या क्या इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं पूज्य गुरुदेव ने इसे समझाने के लिए?
जी हाँ बिल्कुल, 2 बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं उन्होंने। पहला महात्मा गांधी जी का। आपको पता है वो 30 साल की उम्र में आंतों की तकलीफ से इतने परेशान थे कि उन्हें लगता था बस 5 साल और जिएंगे।
अच्छा?
हाँ, लेकिन उन्होंने अपने खानपान में सुधार किया, संयम अपनाया और नतीजा न सिर्फ ठीक हुए बल्कि लंबा जीवन जिया। दूसरा उदाहरण है पहलवान चंदीराम का।
हाँ, उनका नाम सुना है।
वो टीबी के मरीज थे एक समय पर, सोचिए, पर सही आहार विहार और परिश्रम मतलब संयम से वो इतने बड़े पहलवान बन गए। तो ये दिखाता है कि आत्म सुधार से, संयम से, सेहत ही नहीं परिस्थितियां भी बदल सकती हैं।
ये बात तो सोचने वाली है, और ये सिर्फ शारीरिक संयम तक ही सीमित नहीं होगा शायद, मतलब मानसिक स्तर पर भी कुछ होगा।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने, पूज्य गुरुदेव मानसिक ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। वो एक सवाल उठाते हैं कि गायत्री माता का जो चित्र है वो युवा षोडशी रूप का क्यों है।
हाँ, ये प्रश्न तो मन में आता है।
उनका जवाब है, इसलिए ताकि साधक हर नारी में पवित्रता देखे, माँ बहन बेटी का भाव रखे, उसे सिर्फ कामुक नजर से ना देखे। यही असली मानसिक ब्रह्मचर्य है। अपनी सोच बदलना, अपनी दृष्टि बदलना, सिर्फ शारीरिक दूरी बनाना काफी नहीं है।
अच्छा, चर्चा में एक और अहम बात आती है, हमारे जो साधन है, मतलब पैसा, बुद्धि, समय, इनका उपयोग।
ये बहुत ही जरूरी बिंदु है। गुरुदेव कहते थे कि कमाने से ज्यादा जरूरी है कि हम खर्च कैसे करते हैं। अगर कोई अपना पैसा, अपनी बुद्धि या अपना श्रम मतलब मेहनत फिजूल खर्ची में या गलत कामों में लगाता है,
अय्याशी वगैरह में,
हाँ, तो आध्यात्मिक नजरिए से वो बेईमान है, भले ही उसने कमाया ईमानदारी से हो। वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का उदाहरण देते हैं। उनकी तनख्वाह थी 500 रुपए।
उस जमाने में तो बहुत होती होगी।
बहुत ज्यादा, पर वो घर के लिए सिर्फ 50 रुपए रखते थे, बाकी 450 रुपए वो विद्यार्थियों की फीस भरने, उनकी किताबें खरीदने, तेल का इंतजाम करने, इन सब में खर्च कर देते थे। गुरुदेव कहते हैं यही है सच्चा अध्यात्म।
और यज्ञ का जिक्र भी आता है, जिसे हम हवन कहते हैं, उसका भी कोई गहरा मतलब है?
हाँ, अग्निहोत्र या यज्ञ जो है वो सिर्फ आग में घी डालना नहीं है, वो कुर्बानी का, सेवा का प्रतीक है। इसका गहरा मतलब है कि हम समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए अपना समय दें, अपना ज्ञान दें, अपना धन दें, यहां तक कि अपनी विलासिता की चीजें, अपनी सुख सुविधाएं भी त्यागें, उनकी आहुति दें, जैसे भूदान यज्ञ होता था, ज्ञान यज्ञ होता है। ये सब उसी भावना का विस्तार है।
तो ये सब करने से, मतलब आत्म सुधार और सेवा करने से, क्या फिर चमत्कार होते हैं, वरदान मिलते हैं?
देखिए, गुरुदेव का नजरिया यहाँ भी बहुत साफ है। वो कहते हैं कि वरदान या चमत्कार ये उन्हीं को मिलते हैं जो पहले अपनी मदद खुद करते हैं।
अच्छा, मतलब पहले खुद कोशिश करनी हो।
आत्म सुधार के लिए जब आप कदम बढ़ाते हैं तब बाहरी मदद मिलती है। ये मदद कैसी है? जैसे एस्पिरिन की गोली दर्द कम करने के लिए, या जरूरत पड़ने पर खून चढ़ाना। ये सिर्फ सहारा है आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। ये आपको परावलंबी, मतलब दूसरों पर निर्भर बनाने के लिए नहीं है। असली ताकत तो अपने अंदर से ही लानी है।
तो इस पूरी चर्चा का सार क्या समझें? निचोड़ क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि नवरात्रि साधना का जो तत्व दर्शन है वो हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण, विचारों की शुद्धि, अपने पास जो भी है उसका सही उपयोग और दूसरों की सेवा, यही असली अध्यात्म है।
बिल्कुल सही समझा आपने, यही निचोड़ है। जब व्यक्ति इस तरह जीना सीख जाता है ना, अपने विचारों को, अपने कर्मों को सही दिशा देता है, तब असल में उसके जीवन में परिवर्तन आते हैं, जिन्हें हम चमत्कार कह देते हैं। और तब भगवान भी, ईश्वर भी खुद उसके सहायक बनते हैं। वैसे ही जैसे वो सुदामा के दोस्त बन गए, या जैसे शबरी के पास बेर खाने पहुंच गए, या गोपियों से छाछ मांगते थे।
पूज्य गुरुदेव अंत में एक बहुत गहरी बात कहते हैं जो सोचने पर मजबूर करती है। बीज के तरीके से गलिए और दरख्त की तरह फलिए।
हाँ,
शायद इसका यही मतलब है कि जैसे बीज खुद गलकर ही एक बड़ा पेड़ बनता है, वैसे ही आत्म त्याग से, सेवा से ही इंसान का असली विकास होता है, वो फलता फूलता है।
बहुत सुंदर अर्थ निकाला आपने, बिल्कुल।
इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।